तारा परी ने करिश्मा जी से कहा था वो इस बार अपनी शादी जादुई मेहमानों के सामने नहीं करना चाहती है। जादुई मेहमान वो थे जो करिश्मा जी अपने जिन रूपी जादू से बनाती थी, जो उन्होंने तारा परी की हल्दी के समय बनाए थे। लेकिन अब तारा परी ने दुनिया वालों के सामने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था, जो अमन और मान ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन करिश्मा जी का मन सोच विचार से भर गया था और उन्होंने तारा परी के पास जाकर साफ साफ कह दिया था, शादी से पहले तुम्हें अपने परिवार के बारे में हमें सब कुछ बताना होगा, तभी हम तुम्हारी शादी अपने बेटों से कराएंगे। और एक घंटे का समय देकर वे चली गई थीं। तारा परी परेशानी से अपने कमरे में टहलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कुछ सोचकर वो अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती है और अचानक उसके मुंह से निकला, मोहन मेरी मदद करो। ऐसा कहते ही तारा परी की आंखें खुल गईं और वो अपने सिर पर एक हल्की सी चपत मारते हुए कहती है, ये क्या हो गया है मुझे? मैंने ऐसा क्यों बोला मोहन मेरी मदद करो? आखिर क्या वजह हो सकती है और अचानक से मोहन क्यों निकला मेरे मुंह से मदद करने के लिए? तभी अचानक तारा परी अपने बिस्तर की ओर मुड़ी और बिस्तर पर अमन को देखकर वो हैरान रह गई और बोली, ये क्या, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर करिश्मा मैम ने देख लिया तो पक्का वो कुछ ना कुछ ड्रामा करेगी। मैं अमन नहीं हूँ, मोहन हूँ। ये सुनते ही तारा परी पूरी तरह से चौंक गई और बोली, अमन आप मजाक कर रहे हैं ना? आपने जरूर मुझे बात करते हुए सुन लिया होगा। नहीं, मैं वाकई मोहन हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। तारा परी इस बार उस हैरानी से ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगी और अचानक पिछले जन्म का मोहन, उसकी वेशभूषा सब उसे याद आ गया। ये तो वाकई मोहन था। तारा परी की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। तब तारा परी मोहन की आत्मा से बोली, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुम्हारी आत्मा तो अब अमन और मान के अंदर है, तुम्हारा दूसरा जन्म हो चुका है। ये सुनते ही मोहन जोर जोर से हंसने लगा। तारा परी उसे हैरानी से देख रही थी। तब मोहन तारा परी से बोला, हे राधा, तुम अभी भी कितनी भोली हो। मैंने तुमसे कहा था ना, राधा सिर्फ मोहन की है और राधा की सारी परेशानियां भी मोहन की है, और अगर तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी वही परेशानी दूर करने आया हूँ। तारा परी उसे हैरत से देखे जा रही थी। तब तारा परी बोली, मैंने आपसे पूछा है, अगर आपका दूसरा जन्म हो गया है तो आपकी आत्मा को तो अमन और मान के अंदर होना चाहिए था। तब मोहन बोला, मेरी आत्मा उन दोनों के अंदर ही है, लेकिन वे दोनों अपने आप को आज भी आज के इस जन्म के नाम से जानते हैं, अमन और मान। उन्होंने कभी खुद को मोहन माना ही नहीं है, तो भला वे कैसे जान सकते हैं मेरे मन की बात? लेकिन तुमने मुझे अपना लिया है, तुमने मान लिया है कि तुम राधा हो और ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, इसलिए तो तुमने अपनी मदद के लिए मोहन का नाम पुकारा। अगर तुम चाहती तो तुम अपनी माँ यानी रानी परी को भी बुला सकती थी या अपनी मित्र सोनल परी को भी बुला सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिलो दिमाग में अगर कुछ बसा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहन है और मोहन का प्रेम। और जिस दिन अमन और मान ने अपने अंदर के मोहन को पहचान लिया, उस दिन वे दोनों सही मायनों में पूरी तरह से तुम्हारे होंगे राधा। तारा परी आंखें बड़ी करके मोहन की एक एक बात सुन रही थी। तभी तारा परी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मोहन के गाल को छूने के लिए, लेकिन उसका हाथ मोहन के गाल के आर पार हो गया। अब जाकर तारा परी को यकीन आया कि ये वाकई मोहन है। तब तारा परी ने देरी न करते हुए मोहन की आत्मा से कहा, अगर तुम मोहन ही हो तो तुम तो मेरी परेशानी अच्छे तरह से जानते होगे। अब तुम ही बताओ, कहाँ से लाऊं मैं अपने माँ बाप, कहाँ से लाऊं भाई बहन? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं कौन हूँ और इस पृथ्वी पर क्यों आई हूँ। तब मोहन अपना हाथ बढ़ाकर तारा परी को और कुछ भी कहने से रोक देता है और कहता है, राधा तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तभी मोहन ने कुछ पढ़ा और देखते ही देखते उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज आ गया। मोहन ने वो कागज तारा परी को देते हुए कहा, इस पते पर तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मौजूद है। ये सुनते ही तारा परी ने जल्दी से वो कागज मोहन की आत्मा के हाथ में से लिया और मोहन की ओर देखने लगी। लेकिन ये क्या, मोहन की आत्मा वहाँ थी ही नहीं, वो तारा परी की मदद करके कब की गायब हो चुकी थी। तारा परी हैरानी से चारों ओर अपने कमरे में देखने लगी, लेकिन वहाँ मोहन की आत्मा का नामो निशान नहीं था। तारा परी ने अपनी मुट्ठी में बंद कागज को देखा और वो हैरान रह गई, क्योंकि वाकई उसके हाथ में कागज पर किसी जगह का पता लिखा हुआ था। इससे पहले कि तारा परी वो पता पढ़ती, उसे फिर से अपने कमरे में किसी जानवर की गंध आने लगी। तारा परी इस बार उस गंध को नजरअंदाज नहीं कर पाई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी को देखकर वो हैरान रह गई और थोड़ी तल्ख आवाज में बोली, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नरे कमरे में ऐसे बिना दस्तक दिए अंदर आने की? वो कोई और नहीं बल्कि वो बिच्छू ही था जो तारा परी को ले जाने के लिए वहाँ आया था। तब तारा परी के बोलते ही उस बिच्छू ने तारा परी का हाथ पकड़ लिया और बोला, आपकी खूबसूरती देखकर मेरा ईमान डगमगा गया है, आप जैसी खूबसूरत हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। अगर आपको मुझे मालिक के पास नहीं ले जाना होता तो सबसे पहले आपकी इस जवानी का रसपान मैं ही करता। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से हंसने लगा। तारा परी का दिल चाहा उसका मुंह तोड़ दे, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये किसी और का नहीं बल्कि अमित का ही आदमी था। तारा परी ने सोचा कि अगर आज सब दुनिया वाले उसकी शादी में शामिल हो जाते हैं तो अमित भी जरूर आएगा, और जब अमित के सामने उसकी शादी अमन और मान से होगी तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा और उसकी सच्चाई अमन और मान के सामने आ जाएगी। तारा परी यही सोचकर शांत थी और यही सोचकर उसने दुनिया वालों के सामने अपनी शादी करने की बात सामने रखी थी। तारापरी इन्हीं विचारों में गुम थी कि तभी उस बिच्छू ने अपने मुंह से एक बड़ी सी जीभ निकाली। अचानक तारापरी उस बिच्छू की जीभ देखकर एकदम से चिल्ला उठी। तारापरी की आवाज अमन, मान और करिश्मा के कानों में पड़ी। हालांकि बिच्छू ने तारापरी के कमरे का दरवाजा ध्वनि रोधी कर दिया था, जिससे उसकी आवाज बाहर तक न जाए। आम इंसान तारापरी की आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन करिश्मा जी, अमन और मान तो कोई आम इंसान नहीं थे। उन्हें तारापरी की चीख भली भांति सुनाई दे रही थी। वे तीनों जल्दी ही तारापरी के कमरे की ओर दौड़ पड़े। उस बिच्छू को बाहर से अमन, मान और करिश्मा जी के आने की आहट सुनाई देने लगी। उस बिच्छू ने तारापरी को अपनी बड़ी सी पूंछ पर लपेट लिया था, क्योंकि तारापरी को उसने अपनी जीभ के जहर से बेहोश कर दिया था। बिच्छू ने तारापरी को काटा नहीं था, केवल बेहोश किया था, क्योंकि उसे जिंदा तारापरी को अपने मालिक, काली शक्तियों के मालिक अमित के पास, उसे खिड़की के रास्ते से ले जाना था।
लेकिन जैसे ही वो अमन के परिवार के आने की आहट सुन चुका था और जैसे ही मान ने तारापरी के कमरे का दरवाजा बंद पाया, वो तुरंत अपनी बारीक होने वाली शक्ति का प्रयोग करके उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से निकल गया और उसने जो देखा उसकी आंखें हैरत के मारे फटी रह गईं। मान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। तब तक अमन और करिश्मा जी उसके कमरे में आ गए थे और वे तीनों स्तब्ध होकर खिड़की की ओर देख रहे थे, जहां बड़ा सा बिच्छू आधा खिड़की से बाहर निकल चुका था और उसकी पूंछ में बेहोश तारापरी बंधी हुई थी। वो उसे खिड़की के बाहर ले जाने ही वाला था कि तब तक वे तीनों होश में आ गए और अमन का चेहरा एकदम लाल हो गया और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मान ने अपनी हवा से भी तेज दौड़ने की शक्ति का प्रयोग किया और एक ही पल में वो उस खतरनाक बिच्छू की पूंछ के पास पहुंचकर उसने तारापरी को पकड़ लिया। और तब तक अमन एक भयानक जिन में बदल गया और करिश्मा जी तब तक उस कमरे से निकलकर तारापरी के कमरे की खिड़की के बाहर आ गई थीं, ताकि वो बिच्छू किसी भी कीमत पर वहां से निकलकर ना भाग पाए। अब वो बिच्छू चारों ओर से घिर चुका था और जब उसे यकीन हो गया कि अब मान सिंह राठौर की मजबूत पकड़ से वो नहीं छूट सकता, तो अचानक अपने बड़े से विकराल रूप से बदलकर उसने अपना रूप एक सामान्य बिच्छू का कर लिया, जिसकी वजह से तारापरी मान की गोद में ही गिर गई। और चूंकि अब वो बिच्छू एकदम छोटा सा बिच्छू जो सामान्य होता है उतना ही बन गया था, इसलिए वो जिन बने अमन के हाथ में नहीं आ पाया और बाहर खड़ी करिश्मा जी भी उसे नहीं पकड़ पाईं। वो एकदम से गायब हो गया। तब करिश्मा जी चारों ओर अच्छी तरह से खोजबीन करके अंदर तारापरी के कमरे में आ गईं। वहीं मान, जो कि तारापरी को अभी भी गोद में लिए हुए था, उसने उसे उठाकर बड़े ही प्यार से उसे बिस्तर पर लेटा दिया। तब तक अमन भी सामान्य हो गया था और वे तीनों माँ बेटे एक एक करके तारापरी को उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तारापरी बिच्छू के जहर से बेहोश थी, उसे इतनी आसानी से होश नहीं आ सकता था। तब अमन बोला, मॉम ये सब क्या है, आखिर इतना बड़ा बिच्छू कहाँ से आया और तारापरी पर ही क्यों हमला किया उसने? तब करिश्मा जी बोली, बेटा ये तो होना ही था। मैंने कहा था ना, अपनी शादी में दुनिया वालों को शामिल मत करो, जरूर किसी ना किसी बुरी शक्ति को इसकी भनक लग गई होगी। तभी करिश्मा जी की नज़र बेहोश पड़ी तारापरी के हाथ पर गई, जिसमें कुछ पकड़ा हुआ था। करिश्मा जी ने वो कागज़ तारापरी के हाथ से लिया और उसे देखने लगी।